بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir. اور انداز جہاں میں آج ہم گفتگو کریں گے ایران اور گروپ 5+1 کے ماسکو مذاکرات کے تناظر میں. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. ناظرین ماسکو میں 18 اور 19 جون کو ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان مذاکرات ہوئے. ماسکو مذاکرات کو اس لحاظ سے کامیاب بتایا جا رہا ہے کہ 2 روزہ مذاکرات میں زیادہ سنجیدگی اور صراحت کے ساتھ گفتگو کی گئی. پیر اور منگل دونوں دن مذاکرات کے 2-2 ادوار انجام پائے. مذاکرات کے بعد ایران کے چیف ایٹمی مذاکرات کار ڈاکٹر سعید جلیلی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ماسکو مذاکرات میں زیادہ سنجیدگی کے ساتھ گفتگو ہوئی اور ایران نے تفصیل کے ساتھ اپنے نظریات بیان کیے. انہوں نے کہا کہ ماسکو مذاکرات کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہمیشہ سے زیادہ سنجیدگی اور شفافیت کا مظاہرہ کیا گیا. ڈاکٹر سعید جلیلی نے اس پریس کانفرنس میں بتایا کہ ایران نے ماسکو مذاکرات میں اعتماد سازی، شفافیت میں تعاون، ایٹمی ہتھیاروں کی مخالفت اور ایٹمی تعاون کے موضوعات پر گفتگو کی اور کچھ تجاویز پیش کی. ماسکو مذاکرات سے قبل دونوں فریقوں کے درمیان بغداد اور اس سے پہلے استنبول میں مذاکرات ہو چکے تھے. بغداد مذاکرات میں ایران نے گروپ 5+1 کو تجاویز کا ایک پیکج پیش کیا تھا جس پر ماسکو مذاکرات میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی. اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر علی شہباز صاحب کو جو تہران اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے. اسی کے ساتھ دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار ظفر آغا صاحب اور ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز دانشور بر صغیر کے علی جعفر زیدی صاحب. گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں علی شہباز صاحب سے جو تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں. شہباز صاحب
جی,
ماسکو مذاکرات کی فضا کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. جیسا آپ نے اشارہ کیا اور جیسا کہ ڈاکٹر سعید جلیلی نے اپنے پریس کانفرنس بیان کیا تھا کہ یہاں پہ جو ہے بنسبت استنبول کے اور بغداد کے ماحول جو ہے سازگار رہا اور مذاکرات جو ہے شفافیت کے ساتھ کیے گئے دونوں فریقین کے درمیان. ایران بھی جو ہے اپنے جو پیشنہادات تھے جو تجاویزات تھے ایران نے جو ہے سامنے رکھا ان کے اور انہوں نے بھی جو ہے وہ تقریباً البتہ اس کا نتیجہ تو ظاہراً کچھ نکل نہیں آیا چونکہ ایسا ہے کہ ابھی وہ لوگ 5+1 جو 5+1 گروپ ہے 5+1
جی جی
تو یہ اس موقف پہ نہیں ہے کیونکہ ایسا ہے کہ یورپ تو چاہتا ہے کہ ایران سے کچھ سمجھوتا وغیرہ ہو جائے. یورپ کے حالات جو ہے بہت ہی برے ہیں, اکانومی کو بہت ہی خدشہ پہنچا ہے, صدمہ پہنچا ہے اور ہاں امریکہ کا زور ہے. امریکہ بھی جو ہے اس موقف پہ نہیں ہے چونکہ الیکشن ایئر ہے امریکہ میں, چونکہ وہاں پہ جو ہے اوباما کو بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ دوبارہ الیکٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں اور پھر جو ہے اوباما کو دوسرے چیزوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. ایک طرف جو ہے مٹ رومنی جو ریپبلکن کینڈیڈیٹ ہے ان کا جو ہے زبردست اصرار وغیرہ ہے تو ہم اوباما جو ہے رسک نہیں لے سکتے اور جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے پاس وہ صلاحیت ہو میرے خیال سے جو ہے جو جاذبے جو ہو صلاحیت ہونا چاہیے وہ صلاحیت بھی موجود نہیں ہے کہ اس کو جو ہے مسئلے کو حل کریں اور تو لہٰذا بھائی سب چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ماحول تھا وہاں پہ تھا ماحول سازگار تھا دونوں طرف جو ہے جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا ہر 2 دن جو ہے 2 راؤنڈس ہوئے مذاکرات وغیرہ کے اور کافی دیر تک چلے اور دونوں نے سنجیدگی سے جو ہے ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کیا اور ایران بھی جو ہے پیشنہادات رکھے اپنے. ایران کا بھی کہنا یہ تھا کہ اگر جو ہے یہ سمجھوتا اگر وغیرہ ہو تو ہم جو ہے تیار ہیں, ہمارے کچھ مقدار میں جو 20% انریچ یورینیم ہمارے پاس ہے کچھ مقدار اس کی جو ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں تاکہ اس کے معاوضے میں بدلے میں ہم کو فیول پلیٹس دیے جائیں और फ्यूल प्लेट के साथ साथ जो है हमारे कुछ चूंकि तजावीजात जो पेशनवाजात वगैरह थे ये सिर्फ न्यूक्लियर भी थे गैर न्यूक्लियर भी थे, चूंकि ये वाबस्ता था ताकि इंटरनेशनल सिक्योरिटी का मसला भी था, खास तौर पर जो है इलाकाई इस मंतखे की इस इलाके की खत्े की सिक्योरिटी का मसला जो है शाम वगैरह का है, बहरन का है, दूसरे मसाइल भी थे, अलबत्त कहा नहीं गया इसको शफाफ लफ्जों में, लेकिन जो है ईरान ने पेशनार का कि अगर समझौता हो तो समझौता जो है कुल्ली तौर पे हो तमाम चीज़ों के लिए जो मसाइल वाखन अहम मसाइल है, तो लिहाजा जो है रहा उन्होंने कहा कि प्लेन के स्पेयर पार्ट्स हैं, चूंकि उन्होंने साफ सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान किया कि अगर ये स्पेयर पार्ट्स वगैरह हमारे पास ना हो, अगर खुदा ना खास्ता प्लेन को हमारे सदमा पहुंचे तो जानी नुकसान है, तो इंसानियत का नुकसान है इसमें, तो ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, बिल्कुल इंसानियत का तकाजा ये है कि दिया जाए, लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया कि चूंकि अमेरिका उस मौकफ में नहीं है और अमेरिका का जोर है, यूरोप तो चाहता है कि ईरान के साथ मुजाकरात करे और समझौता करे, लेकिन चूंकि अमेरिका का भी दबाव है इसलिए कुछ काबिल खातिर खा जो नतीजा निकल आना चाहिए था वो निकल नहीं आया, और रहा जो है जाहिर तौर पे ये समझा जाता है कि मसलन जो है बगैर नतीजे के तमाम हुए, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर हमारे नाज़रीन भी अगर गौर करें तो उसमें खुद एशन ने भी इशारा किया, कैथरीन एशन जो 5+1 के जो नुमाइंदे हैं लीडर हैं, और खुद सही जल्दी मुज़ाकरात किया कि 3 जुलाई को इस्तांबुल में एक्सपर्ट्स मीटिंग होने वाली है लोअर लेवल की, यानी वहाँ पे जो उनके दोनों तो फरीकैन मिलकर वहाँ पे गुफ्तगू करेंगे, कुछ टेक्निकल बातें हैं, कुछ मसलन दूसरे जो मसाइल वगैरह है इस पर तबादला ख्याल किया जाएगा, अगर वहाँ पे कुछ अगर पेशरफी वगैरह हुई, अगर कुछ किस्म का जो है तवाकुफ पाया गया दोनों फरीकैन के दरमियान, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आइंदा फिर कुछ मुजाकरात की कुछ जो है बात वगैरह चले, क्योंकि ईरान ने कह चुका है कि मुजाकरात बराए मुजाकरात तो जो है कोई फायदा नहीं है, सिर्फ जो है तकरीबन क्या कहेंगे वक्त ज़ाया हो रहा है, दोनों फरीकैन का वक्त ज़ाया हो रहा है, और जैसे बेहतर यह है कि मुजाकरात का कुछ नतीजा निकल आए और शफाफ तौर पर साफ सीधे तौर पर, और ईरान तो जो रोज़े अव्वल से, क्योंकि ईरान का मौकफ आज का नया मौकफ नहीं है, ईरान का वही मौकफ है आज से 2004 में, यानी तकरीबन 8 साल पहले जो कि मुजाकरात शुरू हुए थे, जो मौकफ ईरान ने रखा था और मौकफ ईरान का वही है, ताकि आपको याद होगा नाज़रीन भी बखूबी जानते हो जमाने में फ्रांस है बरतानिया है इन्होंने जो बाकायदा डॉक्टर खर्राज जो ईरान के वजीर खारजा थे उनको ताहुद दिया था उस जमाने में कि हम जो है तैयार हैं मसला हल करने के लिए मसला, उसके बाद जो है इन्होंने अपने खुद बात की खिलाफ वर्जी की और जो वादे किए थे जो राहुलदार जी उससे अमल नहीं किया, उससे नतीजा ये हुआ कि आज यहाँ तक, लेकिन ईरान के नफे में ईरान के मुनाफे में ईरान तो से कह चुका है कि हमारा जो सिचुएशन विन विन है, क्योंकि ईरान जो है एनपीटी के जो खवानीन वगैरह है
उनके मुताबिक
अमल कर रहा है और पूरे अमन मकासद के लिए अमल कर रहा है, और ईरान को पूरा हक है कि जो है 20% तक अमेरिकन के यूरेनियम की अवजूदगी की जाए ताकि इसको जो है मेडिसिन के लिए इंडस्ट्री के लिए दूसरी चीजों में इस्तेमाल किया जाए, कह चुका था कि रोज अवल अगर आप आमादा है सप्लाई करने के लिए तो हम जो है फिर वक्त रोक देते हैं, चूंकि आप आमादा नहीं है आप इसको जो है सियासी मसला बनाकर हमारे को जो है नुकसान में रखना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमारा जारी रखेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपसे गुफ्तगु जारी रहेगी। और नाजरीन चलते हैं दिल्ली स्टूडियो जहां हिंदुस्तान के सीनियर तजिया निगार जफर आगा साहब मौजूद हैं। जफर आगा साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी जफर आगा साहब, मास्को मुजाकरात के बारे में आपकी राय क्या है?
जी वालेकुम। देखिए मास्को मुजाकरात का डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर सबसे पहला जो मैं कहूँगा कि जो फ़ायदा पहुँचा है वो ये पहुँचा है कि ईरान के ऊपर पिछले तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले तक सख्त दबाव था, ये लगता था कि इसराइल किसी वक्त भी अमेरिका के यहाँ के साथ मिलकर या अमेरिका की ईमा के ऊपर ईरान के ऊपर हमला कर देगा, वो सूरत हाल टली है। इस एतबार से अगर ये कहा जाए कि मॉस्को मुजाकरात बड़े कामयाब रहे हैं तो मैं कहूँगा कि गलत नहीं होगा। अब सूरत हाल ये है कि ना इसराइल की तरफ से रोज़ आए दिन की गीदड़ भभकियाँ सुनाई पड़ रही हैं, ना अमेरिका के अखबारों में इस किस्म की खबरें चल रही हैं कि आज नहीं तो कल ईरान के ऊपर हमला होने वाला है। वो प्रेशर यकीनन ईरान के ऊपर से ख़त्म हो गया, और जो एक सूरत हाल ये नज़र आने लगी थी कि किसी वक्त बीते इसराइल की जानिब से हमला हो सकता है, कम अज़ कम ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर किसी कस्म का हमला हो सकता है, वो खतरा टलता हुआ नजर आ रहा है। और इसकी इसका सबब यह है कि मॉस्को में जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं उसके बाद, और जब तक ये मुज़ाकरात अब कायम हैं तब तक ये बात मुमकिन नज़र नहीं आती कि ईरान के ऊपर किसी किस्म का हमला हो। ये पहली कामयाबी है मॉस्को मुज़ाकरात की, और मुज़ाकरात का जो अमल है उसके पस मंज़र में ईरान के लिए और आलमी सतह पर आलमी अमन के लिए, कि वो जो खत जंग के बादल छाए हुए थे वो जंग के बादल कदरे छटे हैं। दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात कितने कामयाब रहे कितने कामयाब नहीं रहे ये कहना बड़ा मुश्किल बात है, चूँकि मुज़ाकरात का भी ताल्लुक हुकूमत, जाहिर सी बात यह है कि 5+1 ये तो कॉम्पोजिशन है मुज़ाकरात का, लेकिन उस ईरान के सिलसिले में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सिलसिले में एक आलमी सियासी पस मंज़र है। उस पस मंज़र में दो प्लेयर बहुत अहम बन गए हैं, एक अमेरिका की क़यादत में मगरबी दुनिया और दूसरा ईरान के अलावा दूसरा अहम प्लेयर इस ताल्लुक़ से इज़राइल है। जाहिर सी बात यह है कि जो भी मुज़ाकरात होंगे वो मुज़ाकरात महज बहुत ही टेक्निकल या बहुत डिप्लोमेटिक या बहुत कहा जाए कि महज न्यूक्लियर मामलात तक महदूद रहें, इस पस मंज़र में मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन नहीं। इन मुज़ाकरात पर आलमी सियासत के और आलमी सियासी प्लेयर्स का, जो अहम दुनिया की बड़ी बड़ी क़ुव्वतें हैं, उनका बड़ा गहरा साया रहेगा। उनके मफादात इन मुज़ाकरात में, मॉस्को मुज़ाकरात में उन मफादात का भी असर रहेगा और रहा
जी।
लेकिन जो बात और चुनांचे जैसा अभी तेहरान में हमारे दोस्त फरमा रहे थे तेहरान स्टूडियो में कि वहाँ पर महज न्यूक्लियर मामलात के ऊपर बातचीत नहीं हुई, बल्कि खत्ते के जो सियासी मामलात हैं वो भी जेर बहस आए। चुनांचे अमेरिका का के जो मफाद हैं इस वक्त, और या इसराइल की जो हिकमत अमली है, वो तमाम अवामिल, वो तमाम फैक्टर्स, वो तमाम अनासर इन मुज़ाकरात के ऊपर हावी रहेंगे और इनका असर दिखाई देगा। लेकिन बस भाई, जो बात मैंने अभी शुरू में अर्ज़ की थी कि जो सबसे पॉजिटिव बात है, कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं हुआ मॉस्को में
जी,
ये बात कोई बात तय नहीं हो गई, कोई बड़ा ऐलान नहीं हो गया कि अब इस किस्म की बात होगी। तेहरान ने अपनी बात पेश की कि हम 20% हमने इनरिच किया है अपने यूरेनियम को मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, और हम उस सिलसिले में अगर इंटरनेशनल क़ुव्वतें तैयार हैं हमको इतना उस किस्म का यूरेनियम देने में, तो हम आगे कुछ नहीं करेंगे। ईरान ने अपनी बात दोहराई जो वो पहले से कहता रहा है। दूसरी जानिब से भी अपनी अपनी बातों को पेश किया गया, लेकिन वही जो बात मैंने आपसे अर्ज़ की कि इन मॉस्को मुज़ाकरात का जो सबसे अहम फ़ायदा रहा और जो उसका आउटकम कहा जा सकता है नतीजा कहा जा सकता है इन मुज़ाकरात का, वो ये है कि ईरान पर से ख़तरा कम से कम कुछ वक्फ़े के लिए टल गया। और अगर ये वक्फ़ा टलता है और इसमें जंग नहीं होती और या जंग में जितनी देर होती चली जाती है तो इसराइल के लिए ये बात मुश्किल हो जाएगी कि वो ईरान पर हमला करे। उसका सबब यह है कि आप वाकिफ़ हैं कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ईयर है और शुरू हो चुका है और अगला इलेक्शन होना है, और वहाँ के जो माशी हालात हैं उन माशी हालात के तनाजर में अमेरिकन वोटर इस किस्म का कोई एडवेंचर बर्दाश्त करने को राज़ी नहीं है कि जिसमें उसकी माशियत को और धक्का पहुँचे और नुकसान पहुँचे। जंग के माने आप जानते हैं कि जंग एक वो शय है कि जिसमें बारूद ही नहीं बल्कि मुल्कों की दौलतें भी जला करती हैं, तबाह हुआ करती हैं। चुनांचे अमरीकी आवाम को इस बात का अंदाज़ा है कि इराक़ और अफ़गानिस्तान की जंग उनके लिए इस कदर गिरा गुजरी है, इस कदर भारी साबित हुई है माशी एतबार से कि अब वो किसी दूसरी जंग के लिए तैयार नहीं। तो मॉस्को मुज़ाकरात में दो तीन बातें जो उभर कर आई हैं, वो ये हैं कि एक जंग के बजाय अब اب گفتگو کا راستہ شروع ہوا ہے, ڈپلومیٹک پروسیس کی طرف رخ ہے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے سلسلے سے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ مذاکرات بڑھتے رہیں گے ویسے ویسے لیے اسرائیل کے لیے امریکی صدارت کے پس منظر میں, صدارتی چناؤ کے پس منظر میں, انتخابات کے پس منظر میں اسرائیل کے لیے ایران کے اوپر کوئی حملہ کرنا مشکل ہوتا چلا جائے گا. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ماسکو مذاکرات بہت اہم مذاکرات رہے ہیں اور انہوں نے جنگ کے خطرات کو ایران پر سے ٹالا ہے اور امن کی طرف قدرے خطہ وہ جو ہے اس پر قدرے امن کا سایہ ہوا ہے. یہ سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ماسکو مذاکرات کا اچیومنٹ ہے.
جی بہت بہت شکریہ ظفر آغا صاحب. اور ناظرین چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں بر صغیر کے ممتاز دانشور ڈاکٹر علی جعفر زیدی صاحب موجود ہیں. زیدی صاحب السلام علیکم. زیدی صاحب ماسکو مذاکرات نسبتاً زیادہ تعمیری اور مثبت فضا میں انجام پائے اور مذاکرات کے گزشتہ ادوار کے برخلاف گروپ 5+1 کے اراکین نے اس بار مذاکرات کو ناکام بنانے کی کوششوں سے پرہیز کیا, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں؟
جی میں سمجھتا ہوں جی کہ یورپ اب اس سٹیج پر آ گیا ہے کہ ایران اگر مذاکرات کی ٹیبل پر رہے جی تو یہ یورپ کو سوٹ کرتا ہے. ڈیڈ لاک یورپ کو اور امریکہ کو بھی اس وقت ایران کے ساتھ ڈیڈ لاک سوٹ نہیں کرتا. سینکشنز لگا کر بھی دیکھ لی گئیں, ایمبارگو بھی لگا اور یورپ میں تیل کی قیمتیں 40% تک بڑھ گئیں, لیکن ایران نے جو اس کا اصولی موقف ہے اس سے نہ انحراف کیا اور نہ ہی اس میں کوئی ایسی لچک پیدا کی. اور وہ جو ایران کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ بہت سیدھا سا ہے کہ جو این پی ٹی کی جتنے ممبرز کو جو اختیارات یا ان کے جو ایز اے نیوکلیئر جو ان کا حق ہے نیوکلیئر انرجی کو حاصل کرنے کا اس کو تسلیم کر لیا جائے, یہ ایک بنیادی ابتدائی نقطہ ہے جو ایران شروع دن سے کہتا آ رہا ہے کہ ہمارا جو نیوکلیئر ہمارے نیوکلیئر انرجی کے حصول کا جو ہمیں حق ہے بطور این پی ٹی ممبر کے وہ دنیا اسی طرح تسلیم کر لے جیسے کہ اور ممالک کے حقوق کو تسلیم کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد سینکشنز میں وہ کمی کی جائے تاکہ مذاکرات کی کوئی بہتر شکل بن سکے, لیکن یورپ اس بات کے لیے بالخصوص امریکہ اور وہاں کی جو زائنسٹ لابی ہے وہ اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھی. لیکن عراق کے بعد ترکی عراق اور اب جو یہ ماسکو مذاکرات ہوئے ہیں اس کا ایک بہت مثبت پہلو یہ ہے کہ ایران ٹیبل پر ہے, اور یہ مثبت پہلو ایران کے لیے نہیں ہے یہ یورپ کے لیے ہے. یورپ میں ایران کا مذاکرات کی ٹیبل پر رہنا یورپ کو سوٹ کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے تیل کی جو 2.5 ملین ایوری ڈے بیرل جو اس کی پیداوار تھی وہ آدھی رہ گئی, اور اب جولائی یکم سے جو امبارگو یورپین یونین کے ممالک نے لگایا ہے اس کے بعد مزید جب کمی ہوگی تو یہاں کا جو عام شہری ہے اس پر اس کا بوجھ پڑے گا, قیمتیں شوٹ کریں گی, انفلیشن آلریڈی اپنی اس کو پہنچا ہوا ہے انتہا کو, تو اس کے جو معاشی اثرات ہیں اس کے نتیجے میں یہاں کا عام شہری, یہاں کا جو باشعور طبقہ بھی ہے.
جی لندن سے رابطہ بھی
اللہ رہے ہیں اپنے مضامین کے ذریعے, تقریروں اور میٹنگز کے ذریعے, کہ امریکہ کی فورن پالیسی کے ساتھ यूरोप को जोड़े रखना यूरोप के हक में नहीं है।
जी,
चुनाचे यूरोप को यह सूट करता है कि ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर रहे।
बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब।
जी
देखिए, मास्को मुज़ाकरात,
जी
ये ईरान का जो एटमी मामला है,
जी
इसको अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने इसमें इतनी पेचीदगियां अपनी तरफ से
सही
उन्होंने पैदा की, अगरचे ये बहुत ही कानूनी और सादा सा मसला है, लेकिन उन्होंने जो पेचीदगियां पैदा की, जिस तरह से सियासी बनाया
जी।
और जितने अरसे से ये चल रहा है, जाहिर है कि एक दो मुज़ाकरात के दौर में तो इसके हल होने की तवक्को नहीं की जा सकती, लेकिन ये जो माहिरीन की सतह पर मुज़ाकरात की तारीख का तयन भी हो गया है कि जुलाई के अवाइल में इस्तांबुल में माहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात होंगे, ये ईरान का मुतालबा था और ईरान इस पर मुसलसल ताकीद कर रहा था और ग्रुप 5+1 इससे परहेज कर रहा था। ईरान का कहना यह था कि जो असल मुज़ाकरात हैं ईरान और ग्रुप 5+1 के दरमियान, इन मुज़ाकरात से पहले दोनों तरफ के माहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए ताकि जो टेक्निकल और कानूनी इसके पॉइंट्स हैं वो तय किया जाए और उस पर इसी सूरत में मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो सकती है और उसका कुछ नतीजा बरामद हो सकता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मुज़ाकरात तो कामयाब कहे जाएंगे।
आज किया था कि ईरान के जो है नफे में रहे मुज़ाकरात।
तो इसमें जो मजीद आपको कितनी पेशरफ्त की तवक्को है?
अब देखिए साहब, चूँकि जैसा कि आपने इशारा किया और जैसा कि जो है हमारे नाज़रीन जानते हैं, मसला चूँकि पेचीदा बनाया जा चुका है, क्योंकि पेचीदा नहीं था मसला ये, तो लिहाजा इसको जो है फौरी हल नहीं हो सकता ये। अगर कोई ये समझे कि ओवरनाइट मसला हल हो जाए कि फौरी एक चेंज ऑफ हार्ट एकदम जो है अमरीका की तरफ से आए आके कहे कि नया हल करने के लिए तैयार हैं, तो भेजा तवक्कात है कि अमरीका जो है तो इस मौक़ में है ही नहीं। और साथ ही साथ जो है अमरीका जो है अगर चाहता होता, कुदरत रखता होता, तो अमरीका जो है और इसको पेचीदा बनाता, लेकिन चूंकि अमरीका के अख्तसात पे भी इसका गहरा असर पड़ेगा इसका। ये मुज़ाकरात जब तक चलते रहेंगे, चलने के बाद में देखिए आप जो एम्बार्गो लगा के देखा ईरान पर, सैंक्शन वगैरह जो आयद किए गए, इसमें जो है ईरान को कुछ ज़्यादा नुकसान तो होता, क्यों नहीं होता, नुकसान क्यों नहीं होगा, लेकिन जैसा कि अमरीका तो रखा था कि ईरान पर भारी भरकम नुकसान होगा, ईरान जो है मजबूर हो जाएगा इल्तजा करने के लिए अमेरिका से, यूरोप से, लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई। और ईरान की इकोनॉमी माशाल्लाह बहुत ही जो है हुकम है, मुस्तहकम है और चीज़ों का जो है बर्दाश्त कर सकती है। तो लिहाजा जो है अगर हमारी ये तवक्को है कि वो आएंगे आके मसला हल करेंगे, तो ये तवक्को भेजा तवक्को है, इसके लिए जो है टाइम वगैरह चाहिए। मसला को दीरान तो रोज अव्वल से ईरान के जो है मतालबात वही हैं कि ईरान में कोई किसी चीज़ों का इजाफा नहीं किया है, ईरान जो है ये नहीं कर रहा कि तो हम जो है पहले ये हमारे मतालबात थे लिहाजा हम बढ़ा के जो है अब कुछ और रखें, नहीं, ईरान के रोज अव्वल से एक ही वक्त कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये NPT खानून के तहत है और इसको जो है NPT खानून के तहत इसको हल किया जाए, लेकिन अमरीका चूंकि नहीं चाहता था कि ईरान तरक्की करना, माफी चाहता हूँ, माजरा चाहता हूँ नाज़रीन से, अमेरिका नहीं चाहता था कि ईरान जो है तरक्की करना, लिहाजा हर किस्म की पेचीदगी ईरान के लिए अमेरिका का खड़ा करा। अब देखिए जैसा कि मैं इसके पहले भी गालिबन इसके कुछ मजाक किया था कि आइए के जो खवानीन वगैरह है उसमें टेक्निकल इशू है और टेक्निकली तौर पर इसको जो है हल किया जा सकता था इसको, लेकिन जो है ईरान बावजूद इसके जो है हमकारी किया, कोऑपरेशन किया, ताउन किया, हत्या कि आइए इंस्पेक्टर्स वगैरह को जो दावत दिया, जाने देने के बाद कैमराज लगाए गए और उनके मॉनिटरिंग हुई, और जो है जैसा हम इसके पहले भी गुफ्तगू में अर्ज किया था कि तकरीबन 4,000 मैनोस का इंस्पेक्शन हुआ, किसी भी मुल्क जो है इस किस्म का आगे बढ़कर कॉपरेशन वगैरह किसी आई के साथ नहीं किया जो ईरान किया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग ये चाह रहे थे कि ईरान को मजबूर करे, मजबूर करके ईरान का प्रोग्राम जो बिल्कुलिया तौर पर रोक दिया जाए, तो ये तो जो है काबिल कबूल बात नहीं है, तो नामुमकिन चीज़ है। और ईरान जो है कोई ऐसा मामूली मुल्क वगैरह नहीं है कि जो है अमरीका के दबाव में प्रेशर में आके जो है अपना जो जायज़ प्रोग्राम है उसको बंद कर दे, और ईरान जो है अपने मौक़े पर अटल रहा, ईरान न सिर्फ अटल रहा बल्कि ईरान तरक्की भी करते रहा। ईरान के जो साइंसदान वगैरह है बावजूद जिसके उनके पर हमला हुआ, उनका जो है शहीद किया गया 5 साइंसदानों को अब तक इसराइल के अमेरिका के जो है स्टेट टेररिज्म के जरिए से, उसके बावजूद भी है ईरान जो है तरक्की करके बताया गया कि हमारे पास सलाहियत है, हमारे साइंसदानों के पास हमारे पास इम्कानात हैं, हम इसको जो है और उसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन चूंकि जैसा कि खुद ईरान के जो है मसूलिन कह चुके हैं कि अगर हम बॉम्ब बनाना चाहे तो हम किसी का डर नहीं है, हम जो है बिल्कुल तौर पर साफ सीधे तौर पर कह सकते हैं हम इरादा कर चुके हैं बॉम्ब बनाने का, बॉम्ब बनाएंगे, लेकिन चूंकि हम मुसलमान हैं और इस्लाम जो इजाजत नहीं देता इस किस्म के हथियार बनाए, जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जो दस्त जमी जो है कुश्तार वगैरह जिससे होती है, बेखसूर लोगों का जो है कि हलाकत होती है, और खासतौर पर रहबर मुअज्जम आयतुल्लाह खामेनेई
जो
फतवा दे चुका है
इसके
हराम होने का। और ये फतवे को आपको हमारे नाज़रीन भी बखूबी जानते हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मॉस्को में कल, डॉक्टर सईद जलील ने इस फतवे को दोहराया और कहा कि जो है हमारे पास जो है इसका बनाना हराम है और ईरान जो है किसी किस्म का इनहराफ नहीं है प्रोग्राम में और जो है ईरान किसी किस्म का इरादा भी नहीं रखता बनाना, लिहाजा हम चाहते हैं कि जो हम जो पेशनहादात किए हैं, जो तजुजात पेश किए हैं, ये तजुजात जो है काबिल कबूल हैं, इसको जो है गौर करें इस पर और इसको मसले को हल करें। अगर ये लोग चाहते हल करना तो बहुत आसान था, इसको खर्च कर सकते, ईरान तो और कुछ नहीं चाह रहा था, इससे ईरान ये चाह रहा क्या था उसकी जो रस्मियत जो है इसकी मानी जाए, इसकी कि ईरान का जो प्रोग्राम है
जो एटमी हुकूक है उनको तस्लीम
किया जाए और एटॉमिक हुकूक के ईरान के, और साथ ही साथ जो ईरान के मुतालबात थे कि उसको जो है सैंक्शन वगैरह जो है उसको हटाया
जाए।
आज के सैंक्शन जो नए सैंक्शन नहीं है, जब से ईरान में इनकलाब कामयाब हुआ 32 साल पहले, जब से सैंक्शन जो है ईरान पर आयद किए गए, मसलन प्लेन के स्पेयर पार्ट्स का जो डॉक्टर सईद जलील ने मसला उठाया कि स्पेयर पार्ट्स हमारे जो एयरक्राफ्ट वगैरह है जो अमेरिकन प्लेन्स हमारे पास है उसके लिए अगर हमारे को स्पेयर पार्ट्स मिल गए तो हमारे को जरूरी नहीं है कि जो है मुसाफिरों की जान को जो है जोखिम में डालना, खतरा ग्राउंड के लिए मोलना। तो ये मसला बिल्कुल एक ह्यूमैनिटेरियन मसला है, बिल्कुल जो है प्योरली एक इंसानियत का मसला है ये। और ईरान जो है अगर अमरीका में वो आखिर इंसानियत होती है, अमरीका में जज्बा होता या जो मुजाकर जो भी आए थे अमरीका के नुमाइंदे वो अगर चाहते इसको दर्क कर लेते बात को मसला हल था, ठीक है बात जो है बिल्कुल वाज़े है, क्लियर है, शफाफ है, ट्रांसपेरेंट है, आपने ये पेशनहादात किए लिहाजा हम भी तैयार आमद आए। लेकिन चूंकि अमेरिका नहीं चाह रहा, अमेरिका चाह रहा है कि जो है ईरान से बाज वसूल करे और ईरान जो है बाज देने के लिए तैयार नहीं है देने के लिए और ना दे चुका है आज तक 32 साल से, तो लिहाजा जो है अमेरिका जो है इसको और पेचीदा करने के लिए आमादा है। लेकिन जैसा कि हमने गुरु की गुफ्तगू के आगाज में अर्ज किया था, क्योंकि वहाँ इलेक्शन ईयर है और ओबामा जो है रिश्ते नहीं चाहता वहाँ पे, और आपको हमारे नाज़रीन बखूबी वाकिफ हैं कि इसके पहले जो मेडवेडो के ज़माने में अभी चंद महीने पहले जबकि पुटिन अभी बरसर इख्तियार नहीं आए थे, ओबामा की और मेडवेडो की बात हुई और ताकि ओबामा ये समझ रहे थे कि लाउड स्पीकर जो है खामोश हैं जबकि जो है लाउड स्पीकर जो है एक्टिव थे और उन्होंने जो है वहाँ कह चुका था कि इलेक्शन के बाद में मेरा जो है हाथ ज़्यादा खुला होगा, मैं जो है आपके साथ जो भी मुजाकरा अदम बगैर एतमाद के तौर पे या बगैर बिल्कुल उसके तौर पे कर सकता हूँ। अब चूंकि इलेक्शन ईयर नहीं है तो मसला यहाँ पे वो इलेक्शन ईयर का है, तो अगर इलेक्शन में अगर ओबामा कुछ रिस्क लिया तो ओबामा जो है शिकस्त यकीनी है, क्योंकि वहाँ के रिपब्लिकन वगैरह आए या इसराइल लॉबी है, इसराइल लोग तो अमरीका का ओबामा का पैर पड़ खींचने के लिए तैयार है। अगर इस किस्म का इकदाम हुआ अगर ओबामा राजी भी हो जाए तो वहाँ के जो है यकीनी शिकस्त है, तो लिहाजा ओबामा नहीं चाहता कि जो है और एटम का जो उसको एक चांस हाथ से खोदे, वो चाहता कि और टर्म लिखा। अब ये नहीं कहा जा सकता कि दूसरी टर्म में आने के बाद
कितनी
सिंसियरिटी होगी, कितना अखलास होगा, खुलूस होगा, वो आखिर हल कर सकेंगे, करने की सलाहियत है या उनको इजाजत दी गई जाएगी हल करने की, लिहाजा ये चीजें दरकार है। और लिहाजा इसराइल का हमला वगैरह तो सब ये बिल्कुल बादल भमकियां है, इसराइल ना इस मौकफ में है ना इसराइल जो है हमला कर सकता है ईरान पे, ये सब जो है बिल्कुल फजूल पहने की बातें हैं। ये अगर करता होता तो है बगैर ऐलान के करता होता, अगर खुदा ना खास्ता इस किस्म की हरकत भी किया तो समझिए उसके बाद में इसराइल का जो है खात्मा है। तो लिहाजा इस सब चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए ये मसले को जो हल किया जा सकता था, लेकिन चूंकि ये लोगों ने खुद इतना पेचीदा बना लिया है, अब ये लोगों के लिए भी जो है एक बाकायदा आबरूमंदाना एक
रास्ता चाहिए,
जी हाँ, एक एग्जिट जो होता ना वो नजर नहीं आ रहा इनको। तो मुजाकरात के दौरान जो है लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता देखिए बहुत ही क्या कहेंगे आप, इन्हें बहुत ही एहतियात के साथ उन्होंने कदम उठाया, जो इनका मौकूफ वगैरह था इस्तांबुल के मुजाकरात के पहले, अब वो मौकूफ नहीं है इनका, उसके बाद बगदाद में मुजाकरात हुए, बगदाद के बाद फिर मॉस्को में हुए, मॉस्को में ये कहा गया कि ठीक है एक्सपर्ट कमेटी, जैसा कि आपने अभी इशारा किया ईरान का पहले से मुतालिबा था कि जो है मुजाकरात शुरू होने से पहले एक्सपर्ट लेवल पर बात की जाए, इन्होंने नहीं रखा उसको और ये करने की कोशिश की कि हो सकता है ईरान मजबूर हो जाए, लेकिन जब देख चुके कि ईरान का मौकूफ जो है बिल्कुल वो हकम मुस्तहकम है, तो लोग इस मॉस्को के गुफ्तगू के दरमियान मॉस्को के मुजाकरात दरमियान राजी हो गए कि उसी किस्म के एक्सपर्ट लेवल टॉक्स रखे जाएं, और जो है इसमें ईरान की कामयाबी भी है। इसका मतलब यह है कि उनके पास वो भी जो है नहीं चाहते कि जो है डेडलॉक वगैरह हो जाए, वो भी ये चाहते हैं कि जो है इसका किसी ना किसी को नतीजा निकल आए, अगर आज नहीं कल नहीं परसों बहरहाल जो है ये मुजाकरा जारी रहेंगे। और रहा और जुलाई 3 को जो होने वाले जो मुजाकरात हैं इस्तांबुल में एक्सपर्ट लेवल के, उससे मालूम होगा कि कितनी पेशरफ्ती हुई है, कितनी जो है और आगे लोग जा सकते हैं।
जफर आगा साहब, جناب حزب معمول ماسکو مذاکرات سے پہلے بھی بعض حلقوں خاص طور پر صہیونی لابی نے کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کی اور مذاکرات کی فضا کو مسموم کرنے میں کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، اس میں خود ماسکو کا کتنا کردار ہے مذاکرات کو کامیاب بنانے میں؟
دیکھیے، دو پہلو ہیں آپ نے جو سوال کیے ہیں اس کے۔ ایک کہ زائنس لابی اسرائیل، امریکہ کے اندر، امریکہ کے باہر، اور خود اسرائیلی حکومت، جس نے پوری قوت سے یہ کوشش کی کہ ایک ایسی فضا بنے کہ جس میں اس کو عالمی برادری، بالخصوص امریکہ اور مغرب کا کی حمایت حاصل ہو، اور وہ ایران پر حملہ کر کے ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز جتنی بھی ہیں ان کو کم از کم تباہ و برباد کر دیں۔
جی،
اور انہوں نے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگایا، آپ واقف ہیں بخوبی، اور ایک فضا ایسی بنا دی کہ ایسا لگنے لگا کہ بس آج یا کل کے اندر ایران کے اوپر اسرائیل کا حملہ ہونے والا ہے۔ امریکہ میں بھی جنگ کے نگاڑے بجنے سے محسوس ہونے لگے۔ چنانچہ صورتحال یہ تھی آج سے تقریباً 1.5 مہینے پہلے کہ لگتا تھا آج نہیں تو کل ایران پر حملہ یقینی ہے، لیکن 2-3 ہفتوں کے اندر، 3-4 ہفتوں کے اندر یکایک ماحول بدلا۔ اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں۔ ایک فیکٹر جو ہے وہ عالمی معاشی بحران کا ہے۔
جی،
جیسا لندن میں ہمارے ساتھی فرما رہے تھے کہ یورپ کی صورتحال اتنی سنگین ہے معاشی اعتبار سے کہ اب وہ کسی قسم کی یورپ جو ہے وہ ایڈونچرزم، جیسی کہ عراق پہ یا افغانستان کے سلسلے میں بش حکومت کے دوران ہوئی تھی، کسی قسم کی ایڈونچرزم کے لیے یورپ تیار نہیں ہے۔ پھر امریکہ میں الیکشن ایئر ہے، معاشی حالات خراب ہیں، اس وہاں کا صدر جو ہے وہ اس صورتحال میں نہیں ہے کہ ایک اور جنگ کی طرف امریکہ کی پیش قدمی کرے۔ تو ایک بہت بڑا فیکٹر یہ تھا کہ جس نے یعنی عالمی معاشی بحران نے مغرب کی دنیا پر اور یورپ اور امریکہ پر یہ دباؤ پیدا کر دیا، فطری دباؤ پیدا کر دیا کہ جنگ کی صورتحال سے وہ پیچھے ہٹے۔ اور اس سے اس کے علاوہ ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ جو ہوا پچھلے 1-2 مہینے کے اندر وہ تھا رشیا میں پیوٹن کا الیکشن جیت کر پھر دوبارہ سے صدر بننا۔ پیوٹن اس بارے میں بہت بہت ان کو بہت 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 کلیئر ہیڈڈ آدمی ہیں۔ پیوٹن کو اس معاملے میں کوئی کسی قسم کا کنفیوژن نہیں ہے کہ مغرب جو ہے اس کا مقصد ایران میں کے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کر دنیا سے نیوکلیئر خطرہ دور کرنا نہیں ہے، بلکہ اس خطے میں امریکی پپٹ گورنمنٹ، ایک اور پپٹ گورنمنٹ قائم کرنا ہے۔ پیوٹن کو اس معاملے میں بالکل کلیئر ہے۔ چنانچہ پیوٹن نے بھی اپنی صدارتی چناؤ کے بعد مغربی دنیا اور بالخصوص امریکہ کے اوپر دباؤ ڈالا کہ دیکھیے، مسئلہ بات چیت سے حل ہونا چاہیے، جنگ کے ذریعے نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ رشیا کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھی امریکہ کے ایران کے نیوکلیئر کسی قسم کے نیوکلیئر ویپن بنانے کے حق میں نہیں ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ امریکہ کے اوپر حملہ کر دیا جائے۔ اس صورتحال میں جبکہ ایران خود یہ کہہ رہا ہے، گھڑی گھڑی یہ بیان دے رہا ہے کہ ان کا نیوکلیئر پروگرام پیسفل پروگرام ہے، ویپن پروگرام نہیں ہے۔ اس لیے پیوٹن کا دباؤ مغربی دنیا کے اوپر یہ تھا کہ آپ ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کیجیے، گفت شنید ہونی چاہیے، بات چیت بیٹھ کر ہونی چاہیے، دھمکیوں سے اور جنگ کے بادل اور خطرات پیدا کر کے یہ بات چیت نہیں ہوتی۔ پوٹن کے الیکشن نے ایک راستہ بدلا۔ اس میں ایران نے بھی، جس کا ذکر ابھی ہمارے ساتھی تہران ریڈیو میں کر رہے تھے، ایران نے کی طرف سے بھی بالخصوص آیت اللہ خمینائی کا وہ فتویٰ، جس میں انہوں نے یہ بہت کھل کر کہا کہ اسلام کسی قسم کے ایسے ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دیتا जिसमें जिससे मास डिस्ट्रक्शन हो, आलमी सतह के ऊपर जिससे आलमी अमन को खतरा पैदा हो। इस फतवे से वेस्टर्न दुनिया को, आलमी अमेरिका को और वेस्ट को, उस अमेरिका और वेस्ट के ऊपर जो ज़ायनिस्ट लॉबी का प्रेशर था, इस फतवे के बाद उसको मगरिब को एक एग्जिट रूट नज़र आया और उसको ये कहने को मौका मिल गया अमेरिका और यूरोप को कि देखिए इसराइल से और ज़ायनिस्ट लॉबी से कि देखिए वो जब इस किस्म की बात कर रहे हैं तो इस सूरत हाल में जंग का रास्ता इख्तियार करना मुनासिब रास्ता नहीं है। और ज़ायनिस्ट लॉबी का जो प्रेशर था वो कम हुआ और उनको अपने कदम पीछे खींचने पड़े और इसका नतीजा आप देख रहे हैं कि मॉस्को मुज़ाकरात हो रहे हैं। यानी तीन फैक्टर्स कहा जाए कि बहुत अहम रहे। एक आलमी और यूरोप आलमी, उसके साथ साथ बिलखसूस यूरोप का माशी बहरान और अमेरिका का में इलेक्शन का साल, ये इस पहला सबब ये था। दूसरा प्यूटिन का सोवियत यूनियन में रशिया में दोबारा सदर बनना और फिर उसके बाद आयतुल्ला खमेनाई का वो फतवा कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि न्यूक्लियर वेपन बनाया जाए। इन तीन फैक्टर्स ने ये आलमी सतह के ऊपर जो इज़राइल ज़ायनिस्ट लॉबी ने जो एक जंग का माहौल बना दिया था, उस माहौल को बरकरार रखना ज़ायनिस्ट लॉबी के लिए मुश्किल हो गया और उसका नतीजा आपने देखा कि डायलॉग का एक रास्ता निकला और उस डायलॉग के रास्ते से ये से 5+1 की मॉस्को में अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई, जो बातचीत हुई और उसके बाद खतरात, जंग के खतरात और टले। मैं समझता हूँ कि ये फैक्टर है कि इन फैक्टर्स हैं कि जिनके सबब ज़ायनिस्ट लॉबी कामयाब नहीं हो पाई अपनी इस साजिश में कि वो ईरान पर हमला कर सके।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जैदी साहब। जनाब, ईरान और ग्रुप 5+1 के मास्को मुज़ाकरात के साथ ही मैक्सिको में रूसी सदर के साथ अमरीकी सदर की जो गुफ्तगू हुई उसमें बाराक ओबामा ने एक बार फिर तस्लीम किया है और इस बात का ऐलान किया है उन्होंने कि पुरान एटमी सरगर्मियां ईरान का हक है। अगर अमेरिका ईरान के एटमी हक को तस्लीम करता है, और उसमें यूरेनियम की अफजूदगी का भी जिक्र हुआ, इसको भी उन्होंने तस्लीम किया कि यूरेनियम की अफजूदगी ईरान का हक है, तो फिर पाबंदियां आप किस लिए हैं?
जी, ये पाबंदियां इसका बस मंजर सियासी है
जी,
वरना अमेरिका को, वेस्ट को, इसराइल को, सबको ये मालूम है कि सैंक्शंस होने के बावजूद अगर ईरान एटम बम बनाना चाहे या एटमी हथियार बनाना चाहे तो वो बना सकता है। और तजर्बा अभी रिसेंटली, बहुत माजी करीब की ही बात है, बहुत दूर की बात नहीं है, नॉर्थ कोरिया ने सैंक्शंस होने के बावजूद एटमी हथियार का हसूल किया। चुनाचे सैंक्शंस का मामला मुकम्मल तौर पर सियासी है
जी।
और चूंकि मिडल ईस्ट में अमेरिका के अपने अजाइम थे और हैं और वो मिडल ईस्ट का नक्शा मुकम्मल तौर पर बदलना चाहते थे अपने मुताबिक, कोंडालिसा राइस ने इस पे बहुत लंबा चौड़ा बयान भी दिया, मजमून भी लिखे थे कि हम मशरक़ वस्ता, एक नया मशरक़ वस्ता क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो मशरक़ वस्ता क्रिएट करने की जानिब जितने भी इक़दामात थे, प्रेशर्स थे, वो उन्होंने पैदा किए हुए थे और उसमें वो हदफ वो हासिल नहीं कर पाए। पहला उन्हें रेसिस्टेंस मिली इराक के अवाम की जानिब से, उसके बाद उनका ख्याल था इराक से सीधा वो ईरान पे पहुंचेंगे, वो नहीं हो पाया। फिर उनका ख्याल था कि इसराइल पर जो हिज़्बुल्लाह और हमास की जानिब से एक जवाबन अपने हकूक़, अवाम के हकूक़ के लिए जो बात ताकत उन्होंने पकड़ी है उसको वो किसी तरह रोक पाएंगे। फिर उनका ख्याल था मिडल ईस्ट में जो ये सारी स्प्रिंग है ये उनके हक़ में जाएगी, तो वो तमाम मामलात जो वो चाहते थे कि उनके हक़ में होंगे वो नहीं हो पाए
जी।
दुनिया बहुत तेज़ी से बदली है, शाम में अभी सबके सामने है कि वो तमाम मामला जिस तरह वो उसको अपने हक़ में बहुत जल्दी हासिल करना चाहते थे वो नहीं हो सका, बावजूद के दहशतगर्दों की ये खेप वहाँ पहुँचाई गई और सारा कुछ। तो पूरी दुनिया को ये मालूम है, ओबामा को भी ये मालूम है। बात यह है कि फैसले पेंटागन में होते हैं और पेंटागन में जो वहाँ की लॉबीज़ हैं उसमें ज़ायनिस्ट लॉबी और न्यूकॉन्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और चूंकि मिडिल ईस्ट में वाहिद एक अनचेक्ड ये यानी दुनिया में जितनी भी न्यूक्लियर स्टेट्स हैं वो सब चेक्ड न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, वाहिद एक रियासत है जो अनचेक्ड न्यूक्लियर स्टेट है और वो है इज़राइल, जो कि 40 साल से एक एटमी रियासत है और जिसको चेक करने के लिए दुनिया में पावर बैलेंस करने के लिए जब अमेरिका ने एटम बम बनाया तो फिर दूसरी ममालिक ने दूसरी अक्वाम ने एटम बम हासिल किया और दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर एक मुल्क के पास नहीं रहा बल्कि तकसीम हो गया था
जी।
तो हतमी यानी अल्टीमेट लॉजिकल सेंस तो ये बनती है कि मिडल ईस्ट में इस रीजन में अगर बैलेंस पैदा करना है तो फिर इसराइल की वाहिद जो मोनोपोली है उसको चेक करने के लिए ईरान के पास एटॉमिक बम होना चाहिए, एटॉमिक हथियार होने चाहिए। लेकिन ये तो ईरान की अपनी हुकूमत और अवाम का फैसला है कि वह एटम बम एटम हथियार तैयार नहीं कर रहे, वरना लॉजिकली तो वहाँ पर जो ब्रिटिश जो यहाँ के यूरोप के अपने स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक भी रीजन में बैलेंस कायम करने के लिए एक न्यूक्लियर ताकत ईरान की शक्ल में होनी चाहिए थी। तो इनके अपने फार्मूले के मुताबिक ये मामला इनकी समझ में है, ये इनको मालूम है कि सैंक्शंस लगाएंगे तब भी अगर कोई कौम चाहे तो एटॉमिक हथियार हासिल कर सकती है। तो जितने भी ये इनके नक्शे थे वो अपने सियासी अजाइम को हासिल करने के लिए थे, जो इन्होंने नक्शे बनाए थे वो हासिल नहीं हो पाए। और ये जंगी जनून की जो फिज़ा थी, ये गीदड़ भपकियाँ थी इसराइल की, ये दुनिया को मालूम था, ना इसराइल हमला करने की पोजीशन में है और ना ही दुनिया इसको एक्सेप्ट करेगी, बिलखसूस जबकि चीन और रूस का एक नया रोल इमर्ज हुआ है पिछले चंद सालों में। और रिसेंटली उन्होंने अपना बिल्कुल जो स्टैंड लिया है सीरिया के मामले पर, और अभी यानी कल की बात है जब उन्होंने ये बात की कि अगर सीरिया पर मुज़ाकरात होंगे तो फिर रूस ने पुतिन ने ये बात कही है कि अगर सीरिया पर मुज़ाकरात होंगे तो फिर ईरान को उसमें शामिल किया जाएगा। चुनांचे दुनिया की जो फॉरेन पॉलिसी पर जो दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड थी यानी दुनिया एक पावर के या ग्लोब एक पावर के कब्जे में चला गया था वो अब नहीं रहा, अब सूरत हाल बदल चुकी है। और इस बदली हुई सूरत हाल में ईरान ने अपना मौक़िफ़ ना पहले चेंज किया ना अब किया, बहुत सीधा सा बड़ा साफ उनका मौक़िफ़ है, वो उनका बुनियादी हक है जिसे वो हासिल करना चाहते हैं
जी।
और ये जो ओबामा की का बयान है उसको सियासी पस मंज़र में ही देखना चाहिए, जो अमली तौर पे इनके सारे अमल हैं और बयानात हैं, अदरवाइज सब जानते हैं कि ईरान के पास ना हथियार है, अगर वो बनाना चाहे तो बना सकता है और ईरान से किसी को ख़तरा नहीं है, ख़तरा है तो इसराइल से ख़तरा है, उस रीजन में अगर इस्तेहकाम नहीं है तो इसराइल की वजह से नहीं।
शुक्रिया
है, ये सब मामलात मालूम है इन्हें, लेकिन वो हदफ जो वो हासिल करना चाहते थे वो नहीं हो पाए। अब उनकी ज़बान भी बदल रही है और यूरोप को ईरान एक्सेप्टेबल है मज़ाकरात की मेज़ पर।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अली जाफर जैदी साहब। शहबाज साहब
जी,
हमारे पास 3 मिनट का वक्त रह गया है, जाहिर है कि पाबंदियां तो असल हदफ नहीं है, पाबंदियों के जरिए कोई और हदफ अमरीका हासिल करना चाहता था, अगरचे इन पाबंदियों से ईरानी आवाम के लिए कुछ मुश्किलात पैदा हुई, लेकिन अमरीका अपने हदफ के कितने करीब पहुंचा है?
आज तक जो हदफ के नजदीक नहीं हो सका अमरीका। देखिए रोजे अव्वल जो है अमरीका का हदफ था कि हुकूमत जो है बरकरार नहीं होना, जब इनखलाब हुआ ईरान में और ईरान जो सैंक्शन शुरू कर दिया
जी,
और वहां पे नाकाम हुआ। उसके बाद में देखिए आप, इतना 8 साल जंग तो ईरान में तहमील की गई, नाफिज की गई सद्दाम के जरिए से। इसका हदफ यह था कि जो है हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए, या जो है आवाम इतने बेजन और बेजार हो जाए ताकि वो खुद हुकूमत के खिलाफ इकदाम करे। वहां पर भी ईरान जो अमेरिका नाकाम हो चुका। उसके बाद इकतसादी मसाइल थे, सियासी मसाइल थे, और दुनिया भर के जो है चीज़ें थे, सैंक्शन वगैरह। लेकिन अमरीका जो है जो भी हरबा इस्तेमाल किया ईरान के खिलाफ, अपने हदफ के नज़दीक जो है आ नहीं सका। और ईरान जो है बहुत ही मौक़ व मोहकम पोजीशन में है, और अमेरिका जो है बिल्कुल कमजोर और ज़ईफ होता जा रहा है। देख लिया गुज़िश्ता 32 साल में जो शिकस्त, आबरूरेज़ी जो अमेरिका को जो हुई है कहीं नहीं हुई। हत्ता कि आप देख लीजिए मसला लेबनान का, लेबनान में 2006 में इसराइल की तरफ से हमला यह हुआ था कि नक्शा बदल दिया जाए वहां पर, लेकिन जिस किस्म की मुखावमत हिजबुल्लाह ने की उसमें जो है इसराइल बिल्कुल नाकाम पसपा हो गया। फिर फिलिस्तीन में 2 साल बाद तकरीबन यही दोहरा गया गजा में। अब आप देख लीजिए हत्ता कि आज जो शाम में हो रहा है कि अमरीका चाहता था कि शाम का जो है हुकूमत बदल जाए, लेकिन जो है वहां पे भी जो है अमरीका नाकाम हो गया। हाफिज बशार असद का पोजिशन जो है बहुत ही मोहकम और मुस्तहकम है, और जो अमरीका बावजूद प्रोपोगंडा के, आप देखिए आए दिन जो है अमरीका की तरफ से इतना प्रोपोगंडा है, बिल्कुल एग्जैजरेटेड फिगर्स, यानी 13,000 आदमी मार गए, फलां किए, ये नाम नहीं है। लेकिन जो अगर असल हालात और देखा जाए तो जो है इस किस्म के हालात नहीं है वहां पे। उसका मतलब यह है कि अमरीका अपनी प्रोपोगंडा मशीनरी और असलहा सब चीज के बाद वहां भी काम है। तो जब अमरीका को जो है हर जगह नाकामी हो रही है, अब मिस्र जो है हाथ से निकल गया अमरीका, तुनिसिया हाथ से निकल गया, अब ये जो है सऊदी अरब का भरोसा नहीं है कि कब क्या होने वाला है सऊदी अरब में, क्योंकि वहां के अवाम बिल्कुल बजन है। वहां पे जो है आज ना कल वहां का जो 12% जो वहाबी हुकूमत हम हुकूमत कर रहे हैं अवाम पर, अक्सरियत पे, वो आज ना कल खत्म होने वाले हैं वहां पे। बहरीन देखिए, बहरीन की हालत बहुत नाजुक है बावजूद कि अमेरिकन 5th फ्लीट वहां पे। तो लिहाजा अमेरिका जो है जो भी महाज ईरान के खिलाफ जो है खोला वहां पे, सिवाय नाकामी के अमेरिका को जो है कुछ चीज जो है हासिल नहीं हुई, और ईरान के हदफ के करीब आने के बजाय अपने हदफ से दूरतर होते जा रहा है। और अमरीका को एक मरतबा जो है पशमानी के अलावा और कोई चारा ही नहीं है इसमें।
बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हम जफर आगा साहब के भी शुक्रगुजार हैं और अली जाफर जैदी साहब के भी। बहरहाल जहां तक पाबंदियों का सवाल है, तो पाबंदियां जो ईरान के एटमी प्रोग्राम से मुर्तबित की जा रही हैं तो ये गलत है। ईरान का एटमी प्रोग्राम नहीं था तब भी अमेरिका की जानिब से पाबंदी थी, और पाबंदी ईरान की खुदमुख्तारी, उसके इस्तकलाल और अपने पैरों पर खड़े होने की वजह से है, जिसको अमरीका कभी नहीं रोक सकता है, सल्व कर सकता है। इसी के साथ प्रोग्राम अंदाज़े जहां अपने अख्तिताम को पहुंचता है। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफिज़, शुक्रिया।